एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, और एकत्र ज्ञान गोष्ठी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे। सवाल ये है कि एक धर्म जो 19वीं सदी के अमेरिका में शुरू हुआ और जिसे बाहरी लोग अक्सर थोड़ा अजीब मानते हैं, वो आखिर दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते धर्मों में से एक कैसे बन गया? इसका रहस्य क्या है?
ये सवाल वाकई फैसिनेट करता है, और इसका जवाब ढूंढने के लिए आज हम रिचर्ड लाइमन बुशमैन की किताब मॉर्मोनिज्म: अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन की मदद लेंगे।
ये किताब एक तरह से हमारी गाइड होगी, जो हमें इस धर्म की ऊपरी सतह के नीचे ले जाकर दिखाएगी कि इसके अनुयायी क्या मानते हैं और क्यों मानते हैं।
बिल्कुल, तो चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। और इस सफर के लिए हमारे जो गाइड हैं, यानी लेखक रिचर्ड बुशमैन, वो कोई साधारण इतिहासकार नहीं है। उनकी पृष्ठभूमि ही इस किताब को इतना इतना खास बनाती है। वो अमेरिका के सबसे सम्मानित इतिहासकारों में से एक हैं। हार्वर्ड से पढ़े हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, अकादमिक तौर पर उनकी साख पर कोई सवाल नहीं उठा सकता।
और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। इतनी अकादमिक योग्यता के साथ साथ वे खुद मॉर्मन धर्म के एक आस्थावान अनुयायी भी हैं।
हाँ,
ये बात उन्हें एक बहुत ही अनोखी जगह पर खड़ा करती है। वो एक विश्वासी इतिहासकार हैं, तो वो सिर्फ बाहर से देखकर विश्लेषण नहीं कर रही, बल्कि हमें अंदर का नजारा भी दे रही हैं।
सही कहा, वो बचाव नहीं करते बल्कि समझाने की कोशिश करते हैं कि ये विश्वास अंदर से कैसा महसूस होता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई आपको अपने घर के अंदर बुलाकर बता रहा हो कि हर चीज का क्या मतलब है, बजाय इसके कि कोई बाहर खिड़की से झांककर अंदाजा लगाए।
बिल्कुल, और यही दृष्टिकोण इस किताब को इतना शक्तिशाली बनाता है। तो किताब का मकसद किसी का धर्म परिवर्तन करना नहीं है, इसका लक्ष्य है समझाना। ये सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है कि स्मार्ट, आधुनिक और तर्कसंगत लोग ऐसी चीजों पर विश्वास क्यों करते हैं जो बाहरी दुनिया को, सच क्यों तो, थोड़ी अजीब लग सकती हैं।
बिल्कुल, किताब का एक बड़ा तर्क यह है कि मॉर्मन धर्म को अलग अलग मान्यताओं की एक लिस्ट के तौर पर नहीं देखना चाहिए,
नहीं,
बल्कि इसे एक पूरी जुड़ी हुई व्यवस्था के रूप में समझना चाहिए। एक ऐसा सिस्टम जो जीवन के हर पहलू के लिए एक नक्शा देता है। मतलब हम कहां से आए, हम यहां क्यों हैं और हम कहां जा रहे हैं।
और उस नक्शे का दिल है बहाली या रिस्टोरेशन का विचार। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
हाँ, ये समझना जरूरी है।
वे ये नहीं कहते कि हमने ईसाई धर्म में सुधार किया है जैसे मार्टिन लूथर ने किया था। वो कहते हैं कि असली चर्च पृथ्वी से खो गया था और हमने उसे उसकी पूरी शक्ति और सिद्धांतों के साथ फिर से स्थापित किया है, रिस्टोर किया है।
तो चलिए इस बहाली की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इसकी शुरुआत कहां से होती है? एक अकेले लड़के से, जोसेफ स्मिथ। 19वीं सदी का अमेरिका, जहां धर्म को लेकर बहुत उथल-पुथल थी। स्मिथ कोई नया चर्च शुरू नहीं करना चाहते थे। उनका सवार बहुत सीधा था, इतने सारे चर्चों में से कौन सा सच्चा है, मैं कहां जाऊं? और यहीं पर पहली असाधारण घटना होती है, जिसे वे प्रथम दिव्य दर्शन या फर्स्ट विजन कहते हैं। किताब के अनुसार स्मिथ को ईश्वर और यीशु मसीह ने दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि सभी चर्च अपने रास्ते से भटक गए हैं और सच्चे चर्च को फिर से स्थापित करने की जरूरत है।
अच्छा,
तो यहीं से, इसी अनुभव से बहाली का बीज बोया गया। ये कोई दार्शनिक विचार नहीं था, ये एक व्यक्तिगत, एक बहुत ही सीधा अनुभव था।
इस अनुभव ने उनके विश्वास को बहुत पर्सनल बना दिया। लेकिन सिर्फ एक दिव्य दर्शन पर एक पूरा धर्म खड़ा करना, वो थोड़ा मुश्किल है।
हाँ बिल्कुल,
आपको किसी ठोस चीज की जरूरत होती है।
और यहीं पर कहानी का दूसरा और शायद सबसे प्रसिद्ध हिस्सा आता है।
सुनहरी प्लेटें।
हाँ, सुनहरी प्लेटें।
बिल्कुल, और यहीं पर हमें इस धर्म का एक केंद्रीय थीम देखने को मिलता है, ईश्वर की साक्षात अनुभूति, अ टैंजिबल कनेक्शन टू द डिवाइन।
टैंजिबल, हाँ।
ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक एहसास नहीं है, बल्कि एक ठोस भौतिक चीज है, सोने की प्लेटें, जिसे आप सिद्धांत रूप में छू सकते थे। एक देवदूत ने जोसेफ स्मिथ को इन प्लेटों तक पहुंचाया और स्मिथ ने ईश्वर के उपहार और शक्ति से इसका अनुवाद किया, जो बुक ऑफ मॉर्मन बना।
ये बहुत दिलचस्प है। अनुयायियों के लिए बुक ऑफ मॉर्मन सिर्फ एक और धार्मिक ग्रंथ नहीं है।
नहीं, उससे कहीं ज्यादा है।
ये जोसेफ स्मिथ के पैगंबर होने का एक भौतिक प्रमाण है।
ये उनके विश्वास की आधारशिला है। किताब भी यही कहती है कि इसकी सच्चाई पुरातात्विक सबूतों से नहीं, बल्कि इसे प्रार्थना पूर्वक पढ़ने से जो आध्यात्मिक गवाही मिलती है उससे साबित होती है। तो ये तर्क से ज्यादा अनुभव पर जोर देता है। तो ठीक है, एक व्यक्ति के अनुभव से एक पूरा समुदाय कैसे बना? यहाँ सियोन या जायन की अवधारणा आती है।
सियोन?
हाँ, ये सिर्फ स्वर्ग का कोई आध्यात्मिक आदर्श नहीं था, बल्कि पृथ्वी पर ईश्वर का एक वास्तविक भौतिक राज्य बनाने की एक व्यवहारिक परियोजना थी, एक आदर्श समाज का ब्लूप्रिंट।
लेकिन इस सपने की वजह से उन्हें बहुत भारी उत्पीड़न और विरोध का सामना भी तो करना पड़ा होगा, है ना?
बहुत ज्यादा। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भगाया गया, और अक्सर ऐसा होता है कि बाहरी दबाव एक समुदाय को अंदर से और ज्यादा मजबूत और एकजुट बना देता है।
सही बात है।
उनकी जो साझा मुश्किलें थीं, वो उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा बन गईं।
बिल्कुल। और इतने एकजुट और तेजी से बढ़ते समुदाय को चलाने के लिए एक बहुत ही अनोखा संगठनात्मक ढांचा चाहिए होता है।
हाँ बिल्कुल।
और यहीं पर उनकी पुरोहिताई या प्रीस्टहुड की धारणा काम आती है, जो कि मेरे हिसाब से उनकी सफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक है।
अच्छा, ये कैसे काम करता है? ये पारंपरिक चर्चों से अलग कैसे है?
बहुत अलग है। ज्यादातर धर्मों में पुरोहिताई कुछ चुने हुए प्रशिक्षित पादरियों तक ही सीमित होती है, लेकिन मॉर्मन धर्म में ये दिव्य अधिकार लगभग सभी योग्य पुरुष सदस्यों को दिया जाता है।
सभी को?
लगभग सभी को। तो ये एक विशाल आम पुरोहिताई यानी ले प्रीस्टहुड बनाता है। इसका मतलब यह है कि चर्च में लगभग हर काम, चाहे वो पढ़ाना हो, नेतृत्व करना हो या प्रशासन हो,
सब सदस्य खुद करते हैं।
हाँ, सदस्य खुद करते हैं, और वो भी बिना किसी वेतन के।
वाओ, तो हर कोई संगठन का एक सक्रिय हिस्सा है। ये तो किसी भी संगठन के लिए एक बहुत बड़ा सबक है।
बिल्कुल।
जब हर किसी को जिम्मेदारी दी जाती है तो उनका जुड़ाव और प्रतिबद्धता बहुत गहरी हो जाती है। ये सिर्फ रविवार को चर्च आने की बात नहीं रह जाती, ये उनकी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन जाता है।
सही पकड़ा। यही उनकी जमीरी स्तर पर संगठनात्मक ताकत का राज है।
अब इस अनोखे संगठन को चलाने वाले जो विचार हैं, वो और भी ज्यादा अनोखे हैं।
हाँ, और शायद यही वो हिस्सा है जो बाहरी लोगों को सबसे ज्यादा चौंकाता है।
अच्छा, जैसे कि?
चलिए उनके धार्मिक विचारों पर बात करते हैं। किताब बताती है कि वे एक ऐसे ईश्वर में विश्वास करते हैं जिसका एक भौतिक शरीर है।
एक शरीर?
हाँ, एक भौतिक शरीर जो कभी हमारी तरह एक इंसान था। ये तो पारंपरिक ईसाई धर्म के निराकार ईश्वर की धारणा से बिल्कुल अलग है।
बहुत अलग। और इतना ही नहीं, वे एक स्वर्गीय माता, एक हेवनली मदर में भी विश्वास करती हैं।
एक मिनट, स्वर्गीय माता? इसके बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं होती? ये तो नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रतीक हो सकता है।
बिल्कुल। और किताब बताती है कि हालांकि ये एक आधिकारिक सिद्धांत है, पर इसे ज्यादा विस्तार से नहीं समझाया गया है, लेकिन इसका होना ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है।
सही बात है।
पर जो विचार मुझे सबसे शक्तिशाली और क्रांतिकारी लगा, वो है अनंत प्रगति या इटर्नल प्रोग्रेशन का।
हाँ।
इसे एक पंक्ति में कहा जा सकता है, जैसा आज मनुष्य है वैसा कभी ईश्वर था, जैसा आज ईश्वर है वैसा मनुष्य बन सकता है।
जरा इस पर सोचिए, ये महत्वाकांक्षा के स्तर को ही बदल देता है। ये मानव क्षमता को असीम बना देता है।
ये विचार जीवन को एक ब्रह्मांडीय उद्देश्य देता है।
मतलब जीवन का उद्देश्य केवल ईश्वर की पूजा करना नहीं है,
बल्कि ये सीखना है कि उसके जैसा कैसे बना जाए।
हाँ।
हर संघर्ष, हर सफलता, हर अनुभव उस दिव्य ट्रेनिंग का हिस्सा है। भारत में जहाँ आत्मा और परमात्मा के एकाकार होने पर इतने गहरे दार्शनिक विचार हैं, ये अवधारणा कुछ हद तक परिचित लेकिन फिर भी बहुत दिलचस्प लगती है।
और इन बड़े बड़े विचारों को उनके मंदिरों में अमल में लाया जाता है। ये समझना जरूरी है कि उनके मंदिर और उनके सामान्य चर्च, जिन्हें वो मीटिंग हाउस कहते हैं, अलग अलग होते हैं।
अच्छा।
मंदिर बहुत पवित्र स्थान है जहाँ सबसे ऊंचे अनुष्ठान होते हैं,
जैसे कि सीलिंग की रस्म।
ये क्या है?
ये एक ऐसा अनुष्ठान है जो परिवारों को सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए एक साथ सील करता है, या कह सकते हैं बांधता है।
अच्छा।
शाश्वत परिवार का यह सिद्धांत उनके विश्वास का केंद्र है। ये उनके अनुयायियों के लिए आराम और प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है कि उनके पारिवारिक रिश्ते मृत्यु के बाद भी बने रहेंगे।
ये एक ऐसा मूल्य है जिसे भारतीय संस्कृति में भी बहुत महत्व दिया जाता है,
जहाँ पारिवारिक संबंध जीवन का केंद्र होते हैं।
ये विचार कि परिवार हमेशा के लिए है, ये बहुत शक्तिशाली है।
हाँ है। तो किताब ये भी बताती है कि वे मृतकों के लिए भी प्रॉक्सी द्वारा अनुष्ठान करते हैं, ताकि हर किसी को सुसमाचार स्वीकार करने का अवसर मिले, चाहे वे किसी भी युग में रहे हों
और रोजमर्रा की जिंदगी में।
हाँ, उनका विश्वास उनके नैतिक कोड में भी झलकता है।
हाँ, जैसे शराब, तंबाकू, कॉफी और चाय से परहेज, जिसे वर्ड ऑफ विजडम कहा जाता है।
और अपनी आय का 10% चर्च को दान करना, जिसे टाइथिंग कहते हैं। ये प्रथाएं उन्हें एक अलग पहचान और समुदाय के प्रति अनुशासन की भावना देती हैं।
तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो कुछ बड़े विचार सामने आते हैं। पहला तो यही है कि उनका विश्वास परमात्मा को बहुत बहुत वास्तविक और सुलभ बनाता है। एक भौतिक ईश्वर, सुनहरी प्लेटें, आधुनिक पैगंबर, ये सब ईश्वर को किसी अमूर्त शक्ति से बदलकर एक व्यक्तिगत हस्ती बना देता है जिससे आप जुड़ सकते हैं।
दूसरा, जैसे हमने पहले कहा, सुधार नहीं बल्कि बहाली। ये अंतर बहुत बड़ा है। वे खुद को ईसाई धर्म की एक और शाखा के रूप में नहीं देखते,
नहीं,
बल्कि मूल खोए हुए चर्च के पुनर्स्थापक के रूप में देखती हैं। ये उन्हें एक अद्वितीय अधिकार और उद्देश्य की भावना देता है।
और तीसरा, मानव देवत्व की वो विशाल दृष्टि, ये विचार कि हम में ईश्वर बनने की क्षमता है, ये जीवन को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। और अंत में शाश्वत परिवार की प्रधानता, जो उनके सामाजिक ताने बाने का आधार है। इस किताब में कुछ पंक्तियां हैं जो वाकई दिमाग में रह जाती हैं। एक है, मॉर्मन धर्म की नींव किसी नए विचार पर नहीं बल्कि एक नई घटना पर रखी गई है, एक लड़के का ईश्वर से सीधा सामना।
ये उनके विश्वास को बहुत अनुभवात्मक बनाता है, ना कि केवल सैद्धांतिक। एक और विचार जो मुझे बहुत दमदार लगा, जीवन का उद्देश्य केवल ईश्वर की पूजा करना नहीं है, बल्कि ये सीखना है कि उसके जैसा कैसे बना जाए।
हाँ, ये अनंत प्रगति का विचार, जीवन के हर पहलू को, हर संघर्ष और हर सफलता को एक बड़ा अर्थ देता है। ये सिर्फ अगले जीवन की तैयारी नहीं है, बल्कि इसी जीवन में एक दिव्य प्रशिक्षुता है।
तो इन सब बातों से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं, भले ही हम उनके धर्म को ना मानते हो?
हाँ, ये जरूरी सवाल है।
मुझे लगता है पहली सीख है दूसरे के विश्वास के प्रति सहानुभूति रखने की। ये किताब हमें ये पूछना सिखाती है कि लोग किसी चीज पर क्यों विश्वास करते हैं, बजाय इसके कि वे क्या विश्वास करते हैं।
हाँ, ये समझने की कोशिश करना कि किसी का विश्वास उनके जीवन को कैसे अर्थ, आराम और उद्देश्य देता है। यह हमें अधिक सहिष्णु बनाता है और ये किसी भी विश्वास या विश्व दृष्टि पर लागू होता है।
और ये सिर्फ सहिष्णुता की बात नहीं है, ये समझने की भी बात है कि एक बड़ी कहानी या एक ग्रैंड नैरेटिव इंसानों के लिए कितना जरूरी होता है।
मतलब
एक ऐसी कहानी जो ये बताए कि हम कहाँ से आए हैं, क्यों हैं और कहाँ जा रहे हैं, वो जीवन को उद्देश्य और लचीलापन दे सकती है। मॉर्मन धर्म की सफलता दिखाती है कि एक व्यापक विश्व दृष्टि इंसानों के लिए कितनी शक्तिशाली हो सकती है।
तो अंत में आपके लिए इस किताब से सबसे आश्चर्यजनक बात क्या रही?
उससे परे जाकर मॉर्मन धर्म को एक जटिल और व्यापक विश्व दृष्टि के रूप में देखना। इसे अक्सर कुछ अजीब गरीब रिवाजों के लिए जाना जाता है, लेकिन किताब दिखाती है कि ये जीवन के सबसे बड़े सवालों के कितने गंभीर और सुसंगत जवाब देने की कोशिश करता है।
मैं सहमत हूँ। मेरे लिए अंतिम सीख ये है कि हमारी आधुनिक और अक्सर निंदक दुनिया में एक पुनर्स्थापित धर्म की शक्ति को समझना। यह निश्चितता समुदाय और उद्देश्य के लिए गहरी मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है। यह दिखाता है कि कैसे 19वीं सदी का एक अमेरिकी धार्मिक नवाचार आज दुनिया भर में फैल गया है और लाखों लोगों के जीवन को आकार दे रहा है। ये विश्वास की शक्ति का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।